surgió me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और मौजूदा स्थिति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सोनू सूद और राजेश लेख।
स्वागत है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा पर इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं सोनू सूद और मेरे साथ है मेरे को एंकर राजेश लेख। और मौजूदा स्थिति पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मदन जैरा और शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। एम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
You know, the stoppage of firing and military action between India and Pakistan was worked out directly between the two countries. The Pakistan DGMO initiated the call this afternoon, after which discussions took place and understanding reached. There is no decision to hold talks on any other issue at any other place. Further, India has decided that any future act of terror will be considered as an act of war against it, and New Delhi will be responding accordingly. Top government sources confirmed this, and this came in the wake of ongoing escalation from the Pakistan side. And this is the point that I would like to talk to our esteemed guest present in the studio. What do you think will happen when it comes to the act of terror being considered? Anything that happens will be considered as an act of war.
देखिए, जब आज 5 बजे संघर्ष विराम की घोषणा हुई, 5 बजे नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि 6 बजे हुई, विदेश सचिव ने जब संघर्ष विराम की घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान दोनों संघर्ष विराम को राजी हो गए हैं, उससे पहले भारत सरकार ने निर्णय लिया था। तो मुझे लगता है कि इस निर्णय से के जरिए एक पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया गया था कि हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। पहले भी अपनाता था, लेकिन अब और क्लियर कट मैसेज पहले बातचीत से पहले पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया गया इसके जरिए कि कोई भी आतंकी गतिविधि भारत में होगी, अगली बार से उसे सीधे हम वार के तौर पर हम एक मानेंगे कि हमारे यहाँ अगर आपने आतंकवादी गतिविधि की है तो आपने हमसे युद्ध शुरू कर दिया है। ये संदेश पाकिस्तान को दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि ये बातचीत जो हुई है, पूरी बातचीत क्या हुई ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन इस संदेश को पाकिस्तान को समझा दिया गया है कि आगे आपको क्या करना है। तो उसके बाद जो जयशंकर का ट्वीट भी आया है, विदेश मंत्री हमारे हैं, उन्होंने जो ट्वीट भी किया है उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद को लेकर हमारा स्टैंड पहले से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है और आगे अगर जो आगे हम जो भी बातचीत होगी, अब जैसे पाकिस्तान से 12 मई को बातचीत होगी, एक दिन बाद ही बातचीत होगी, सोमवार को बात होगी, तो उसमें भी इस बात को मुझे लगता है कि भारत स्पष्ट तौर पर कहेगा,
रिएटरेट करेगा
कि जो हो चुका है अब तक वो हो चुका है, उसमें तो दोषियों को सजा मिलेगी, जो बचे हैं उनको मिलेगी, लेकिन आगे इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये इस समझौते से भी साबित है और जो भारत सरकार ने एक अलग से निर्णय लिया है उससे भी साबित है कि अब ये घटना फिर से होनी चाहिए। आपको याद होगा उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर पुलवामा हो गया, फिर हमने एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, फिर हमने एयर स्ट्राइक की, ऐसा कब तक? ये भारत आगे नहीं चाहता है।
तो अभी विक्रम मिश्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने सीज फायर के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.
Ambassador Tayal hamare saath jud gaye hain. Ambassador Tayal, aapka bahut bahut swagat hai aakashvani mein। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सीज फायर की डिक्लेरेशन हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, और साथ ही साथ जो बहुत स्ट्रांग जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का जो मैसेज गया है, सभी हमारे जो आधिकारिक सूत्रों द्वारा, विदेश मंत्री ने भी ट्वीट में कहा है, और जैसा अभी मेरे को एंकर कह रहे थे कि जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी एक्ट, अब से कोई भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सो इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं जो अभी का घटनाक्रम है?
देखिए, जो भी ये लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, उसका ध्येय क्या था? 22 अप्रैल को जो निर्ममता से जिस तरह हमारे टूरिस्ट की हत्या की गई, टेररिज्म का जो एक्ट था, वो पहला एक्शन था पाकिस्तान की तरफ से जिसका जवाब हमने दिया, फिर उन्होंने कुछ उसके खिलाफ किया, फिर हमने कुछ किया, तो ये सब चीज आगे बढ़ती जा रही थी। आप हमारे तरफ से जो वक्तव्य आए हैं, हमारे विदेश सचिव ने जो पिछले 3 दिनों में दिए, हर तरफ हर बार ये कहा गया कि जो भी हमारी रिस्पॉन्स है वो प्रोपोर्शनेट है, रिस्पॉन्सिबल है और मेजर्ड है, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं करना चाहता, भारत टेररिज्म को नेस्तनाबूद करना चाहता है। तो मैं समझता हूं उसमें विश्व का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है। मेरा ये भी मानना है कि जो पिछले कल जो हमने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारत ने क्रूज मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल, तो शायद पृथ्वी और ये सब यूज किए गए, उनसे उनकी जो एयर स्ट्रिप्स थी रावलपिंडी के पास की भी जो थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया गया, उनके रडार को ध्वस्त कर दिया गया, तो उसके बाद से पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में था कि वो भारत के खिलाफ और अब कुछ अटैक नहीं कर सकता था। इस सब माहौल में अमेरिका भी बहुत चुस्त था और पीछे बातचीत में लगा हुआ था। मेरा अपना ये मानना है, मेरा उसमें कोई सबूत नहीं है, पर जो आईएमएफ का जो लोन 2.3 बिलियन का कल आईएमएफ ने रिलीज किया, उसमें आपने और हमारे सब श्रोताओं ने ये नोट किया होगा कि भारत उसको अपोज कर रहा था, पर भारत ने उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, भारत एब्सटेन किया। मेरा ये मानना है कि शायद अमेरिका, ब्रिटेन और भी जो G7 के देश हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि अगर आपको ये लोन ट्रांस चाहिए तो आप भारत के पास जाइए, युद्ध विराम करिए। और ये भी देखिए, जो हम सबको नोट करना चाहिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की और जनरल आसिम मुनीर से भी बात की, क्योंकि उन्हें पता है कि जो असली जो इसमें पूरे दोषी हैं और वो तो आसिम मुनीर हैं, और पाकिस्तान जो हम सब जानते हैं बिल्कुल कंगाल देश है, वो बैंकरप्ट है टोटली, अगर ये आईएमएफ का उसको ट्रांस नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल बियॉन्ड द एज चला जाएगा। तो उस लीवरेज को अमेरिका ने यूज किया। और फिर मैं अपने श्रोताओं को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 3:35 पर उनके पाकिस्तान के DGMO का फोन हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के पास आया। ये एक लिंक है, हमारे श्रोताओं को पता होगा, उनको फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत और पाकिस्तान के, इनकी एक टेलीफोन हॉटलाइन है, और हर मंगल को वो वैसे ही बातचीत करते हैं कि जस्ट भाई क्या है, क्या हो रहा है, पर उधर से ये फोन आया और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि 5 बजे आज के समय से युद्ध विराम वो चाहते हैं, और भारत तो ये कह ही रहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, तो भारत ने एकदम उसको मान लिया। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्वीट एक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की आई है, वो हमारे सब श्रोताओं को ठीक से उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों साइड्स, मैं इंग्लिश में कहूंगा, विल स्टार्ट टॉक्स ऑन ए ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल साइट। तो युद्ध विराम एक अपनी जगह है, संघर्ष विराम एक अपनी जगह है, जिसका रिव्यू होगा 12 तारीख को 12 बजे जैसे हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्र ने कहा। पर जो मुद्दे हैं, जो टेररिज्म का जो हम बार बार कह रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री ने भी ट्वीट किया कि हमारा जो है संघर्ष टेररिज्म के खिलाफ चलता रहेगा, वो मुद्दा उस पर आप बातचीत होगी पाकिस्तान से, एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, वो कब होगी ये अभी भविष्य बताएगा। पर वहां एक चीज और मैं श्रोताओं को अपने बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से पहले मुद्दा केवल टेररिज्म का होता था, पर इस बार जब पाकिस्तान से बात होगी तो सिंध वाटर ट्रीटी का भी मुद्दा उसके सामने आएगा। कई बार हमने कहा है पाकिस्तान से कि इसमें रिव्यू की आवश्यकता है, 50 साल 70 साल हो चुके हैं इस ट्रीटी को, तो ये मुद्दा भी अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी बातचीत होगी तो भारत की तरफ से उठाया जाएगा।
Ambassador Thal, Pakistan is known to be hand in glove with terrorist elements, and in the given situation, how will Pakistan administration be able to hold these elements away and keep the treaty alive?
Treaty of Indus Water Treaty?
No, I'm talking about the ceasefire that we have agreed upon.
I think what apprehension you are conveying is very right. Pakistan has again and again promised that it will control terrorism, but every 3-4 years we see that there is a terrorism strike. So this story can be repeated, this picture can be repeated. Nobody can guarantee that Pakistan will get reformed after this setback which they have got by our forces. But again, I have said, and Prime Minister has said, that India's objective, India's aspirations, the people of India want Viksit Bharat in 2047. That is our primary goal, that is our primary objective. To destroy Pakistan is not our primary objective at this moment. To destroy terrorism is our primary objective. So we should not get derailed or deflected from the primary objective of the government of India, of the people of India, of the leadership of India, of Prime Minister Narendra Modi, that India must be a Viksit Bharat. And any, in 2047, and any prolonged war, conflict, daily bombardment, closing of airspace, etc., detracts from India's economic development. Who will invest in a country which is under a cloud of war? So it has been a very measured decision. I think the government of India, the leadership of India, they have thought very deeply that what is India's real priority, what is India's real aspiration, and don't get deflected. Arjun ki tarah machli ki aankh ko dekhna hai. Usme jo bhi badha aayegi, us pe nipta jayega, usko khatam kiya jayega. Par गोल भारतवर्ष का एक विकसित भारत का रहेगा, और मैं समझता हूं कि जो भी आगे होगा हम उस रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे।
हम बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का यही रुख जारी रहेगा। जैसे अभी एम्बेसडर तायल भी कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, ये जो टेररिज्म है इससे कई इम्पैक्ट होता है, तो आपको लगता है कि टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसने सभी देशों को छुआ है, सभी देश, कोई भी देश उससे बचा नहीं है, और अगर एक कंबाइंड एफर्ट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक आइसोलेशन हो या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, या अगर हम आइसोलेशन वर्ड ना भी यूज करें, प्रेशर हो, तो आपको लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म ब्रीड हो रही है, जो बहुत देशों को इम्पैक्ट करती है, हम आशा कर सकते हैं कि वो एलिमिनेट होगी?
देखिए, आइसोलेशन के सोनू बहुत सारे मैकेनिज्म पहले ही बनाए गए हैं, और अगर आप जैसे आईएमएफ को हम देखें तो उसमें एफएटीएफ है, जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टिंग होती है, वहां पर ग्रे लिस्टिंग होती है, आइसोलेट करने के प्रावधान बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो उसको देखते हुए, पर अलग अलग देशों में समय अलग होता है, उसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं टेररिज्म के, पर अभी भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध विराम हुआ है जिसकी घोषणा करी गई है, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में जो पावर सेंटर्स हैं वो अलग अलग हैं, कभी आईएसआई सुनने को मिलता है, कभी सरकार का सुनने को मिलता है, कभी आर्मी का वर्चस्व सुनने को मिलता है, तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान से अगर ऐसे डीजीएमओ से फोन आया है और इस प्रकार का सीज फायर हुआ है तो इस पर वो अमल करें, और क्योंकि भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब अगर कुछ भी ऐसा होता है, और आप देखिए कि पिछले हम 10-12 दिन का तजुर्बा देखें तो उसमें सीज फायर पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, पर उसके वायलेशंस लगातार रोज LOC के आसपास देखे जा रहे थे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है अब की बार पाकिस्तान को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी प्रकार की सीज फायर का उल्लंघन होता है, युद्ध विराम जो आज अग्री हुआ है, तो उसको जैसा कि अभी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो ये इसमें हिडन संदेश क्या है? इसमें संदेश यह है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का टेररिज्म अगर हमारे ऊपर हमें देखने को मिला, चाहे वो LOC में वायलेशन हो, चाहे वो जिस प्रकार से पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, चाहे वो इससे छोटा हो, इससे बड़ा हो, किसी भी प्रकार से वो नहीं होगा। और मैं इसके परिपेक्ष में आप कहें तो सिर्फ एक मिनट में मैं बताना चाहूंगा दैट यू नो द IMF मीटिंग विच हैपेंड लास्ट इवनिंग एंड एवरीबडी वॉज वंडरिंग दैट हाउ कम पाकिस्तान वॉज गिवन सैंक्शन $1.3 billion, द टोटल अमाउंट वॉज 2.3 or 2.4 वॉट एवर अमाउंट। तो एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार शायद पाकिस्तान को ये सहायता नहीं दी जाएगी बिकॉज इट वॉज इन द मिडल ऑफ वॉर ये मीटिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सैंक्शन तो कर दिया गया, पर G7 कंट्रीज की तरफ से अमेरिका का 16% वोट है IMF में, यह शर्त लगा दी गई होगी कि आपको पैसा तो हम देंगे, और पाकिस्तान के लिए पैसा उतना ही जरूरी था जितना किसी मरते हुए व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो यह शर्त लगा दी गई होगी कि आपको अगर पैसे को इस्तेमाल करना है आपने लड़ाई के लिए, आप तो लोगों के लिए लेते हैं कि हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास लोन रीपे करने के लिए नहीं है, हमारे पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए पैसे नहीं है, और आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद पैसा। तो मुझे लगता है यहीं से कहीं ये बात उठी होगी और DGMO का फोन आया, एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूड। बट माय ओनली कंसर्न इज एंड आई होप यू नो दिस सीज फायर रिमेन्स इन प्लेस बिकॉज नाउ इफ इट इज वायलेटेड आई थिंक इट विल इंडिया इज क्लैरिफाइड। और आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने अगर ध्यान से सुना तो एक तरफ हमारे जो तीन माननीय डिफेंस के ऑफिसर्स बैठे हुए थे, दोनों महिला ऑफिसर्स जिनको हम कुछ दिन से देख रहे हैं, आज उनके बीच में
बहुत गर्व की बात है
और आज उनके बीच में एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर भी बैठे हुए थे। तो आपने देखा जहां एक तरफ उन्होंने ये घोषणा करी कि हम आज से रोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो महिला ऑफिसर्स बैठी थी उन्होंने ये कहा कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान द्वारा। तो दोनों बातों को एक साथ, एक तरफ युद्ध विराम की बात की गई, एक तरफ एक सच्चाई भी बताई गई कि जो, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जितने भी पावर सेंटर्स हैं, उनको ये क्लियर कट संदेश मिला होगा कि अब अगर होता है ठीक है एक मौका हम दे देते हैं। और एक अच्छी बात यह हुई है कि दुनिया भर को संदेश मिल गया है भारत की सैन्य शक्ति का।
बिल्कुल,
मुझे लगता है लोगों को पता लग गया है, दुनिया भर के देश जो भारत की तरफ आंख उठा के कभी अगर देखने की हिमाकत करेंगे उनको समझ आ गया कि भारत की शक्ति क्या है। क्योंकि सारे ऑपरेशन में मैं, हालांकि ये डिफेंस का मामला है, पर मुझे लगता है कि भारत इसमें बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं, मैं एक बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि क्या पहलगाम अटैक का हमने बदला ले लिया, तो जिस प्रकार से पाकिस्तान में नुकसान हुआ है, भले ही वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, वो उसको उल्टे तरीके से दिखाएं कि हमने तो भारत का ये डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कर दिया, जबकि वो सब झूठ था, तो मुझे लगता है उनके लिए भी एक संदेश है कि हमने माकूल बदला लिया है और उनको लेसन सिखाया है कि आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका बहुत भारी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
शरद, वेरी राइटली सेड, एंड आई होप पाकिस्तान डिसिस्ट्स फ्रॉम यू नो डूइंग एनी terrorist activity henceforth. But in times of geopolitical uncertainty, markets tend to react swiftly. But peace, even tentative, brings its own wave of shifts, opportunities and challenges. As India navigates this new phase, what would be the implications for trade, investors' confidence, energy prices and sectoral performances going forward?
Well, from an economic perspective, this is a welcome move from a geo-economic, because war anywhere does not help. You're talking of, look at the stock markets, what was happening in the stock markets over the last, we had very positive cues coming to us, but then because of these tensions, the stock markets were suppressed. We had recovered from Nifty 21,500 to 24,500. We were on the road to recover. We would have probably beaten the previous high, but they were suppressed. The trade had stopped. The economic activity around the borders, you know, Rajasthan, Punjab, J&K, because of constant blackouts and people living under tension, I think they were all impacted. There were so many shipments I came to know which were stopped. International trade to a certain extent has stalled. So overall, it affects the GDP. It affects investments out of all, because nobody would like to invest in a country where the economic peace or political peace or geopolitical peace is not in place. So I think this is a very welcome move, and more than us, I think it will help Pakistan, because Pakistan anyway, I mean, was in a bad shape. They are 11th part of our GDP. Their GDP is about $370 odd billion. We have now crossed 4.187 trillion dollars. So look at the differences. I think for Pakistan it's a bigger relief than us, but more important is the message which has been conveyed, that beware, this will not be tolerated. Okay, we accept it, but then if you do it again, you've had it, as they say.
So, मदन जी, जैसा शरद जी ने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, और अगर कुछ भी एक्ट होता है तो उस पर इमिजिएटली एक्शन लिया जाएगा. तो जो भारत के सशस्त्र बलों की मजबूती सामने आई है, उसके साथ ही साथ उनकी संवेदनशीलता भी सामने आई है. उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जो भी है कार्रवाई की, और जो सेक्युलर हमारा एक सेक्युलर हमारा फैब्रिक है वो भी सामने आया है. मिस इन्फॉर्मेशन की कोशिश करी पाकिस्तान ने जरूर फैलाने की, लेकिन इस बात पर भी बल दिया गया अभी की प्रेस ब्रीफिंग में, ये कितना इंपॉर्टेंट है?
देखिए, दो तीन बातें हैं. अगर मैं इन पिछले चार दिनों की घटनाक्रम को देखें, जिसे हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, एक तो हम लोग जो भी हमने हमारी तरफ से जो भी जवाबी हमले किए गए, हमने सिर्फ जो टारगेटेड लक्ष्य था वहां पर हमले किए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार लोगों पर फायरिंग की गई और 16 लोग वहां पर डेथ भी हुई है, ये बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है. इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से हमारे एक धार्मिक स्थल पर, बल्कि हमें एक नहीं दो, एक क्रिश्चियन और एक सिखों के धार्मिक स्थल पर हमला किया गया. हमने इसका भी ध्यान रखा कि पाकिस्तान के किसी धार्मिक स्थल पर कोई ऐसा हमला नहीं हो. अब किसी धार्मिक स्थल में कोई आतंकी शिविर चल रहा होगा और उसको नुकसान पहुंचा होगा, तो इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, एक तो बात यह है. लेकिन पाकिस्तान क्या करता है कि जो एक तरफ तो वो सैन्य कार्रवाई करता है, जैसे पहले भी ये बात आई है कि वो कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता है और सेना की तरफ से भेजे जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं, और जब कोई ऐसी बात आती है वो कहता है हमारे तो आदमी नहीं है, हमारी तो सेना नहीं है, जबकि वो सेना के ट्रेंड के हुए ही आतंकवादी होते हैं जो कश्मीर में सक्रिय रहते हैं. इसी प्रकार इसी दौरान हमने कल ये भी देखा पाकिस्तान ने क्या किया, वहां पर अपने जो नागरिक विमान है उनको लगातार उड़ा रहा है और दूसरी तरफ ड्रोन से भारत पर हमला कर रहा है. इससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली थी, जो वायुसेना थी, जब वो कार्रवाई कर रही थी तो उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी प्लेन को कोई रॉकेट या कोई मिसाइल न लग जाए, अगर ऐसा लगता है तो हमारी उससे बदनामी होती है. तो इसमें जो हमारी पेशे पर वायुसेना ने ध्यान रखा, तो पाकिस्तान की हर हरकत का और उसकी हर मिस इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखा. आज हमारी जो PIB की मीडिया टीम है वो दिन में कम से कम 100 से 150 ऐसे फैक्ट चेक कर रही है जो पाकिस्तान की तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वहां से झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और हमारी PIB की जो फैक्ट टीम है वो लगातार उस फैक्ट को चेक करके हमारे जो देश की मीडिया है उसको वो उपलब्ध करा रही है, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में नहीं जाए, या सोशल मीडिया में अगर है भी तो उसे वहां से हटाया जाए. तो जिस प्रकार, चाहे वो सेना के स्तर पर कहें या मिस इन्फॉर्मेशन के स्तर पर कहें या फिर जो एक कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए कहें, उस स्तर पर हमारे देश ने काम किया, हमारी सेनाओं ने और हमारी दूसरी टीम ने काम किया, तो मुझे लगता है कि वो एक जो कहते हैं ना कि एक कहावत है युद्ध और वार में सब कुछ जायज है, लेकिन भारतीय सेना या भारत ऐसा नहीं समझता है कि सब कुछ जायज है. हमें समझते हैं कि जो जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, बाकी किसी नागरिक की हत्या, निर्दोष व्यक्ति को चोट नहीं आनी चाहिए, कोई जो सिविल ठिकाना है वहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई झूठी अफवाह फैलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला किसी को.
आपने बिल्कुल ठीक कहा मदन जी, बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मीटिंग ऑन May 12th? आवर ऑब्जेक्टिव इज we do not want any terrorist activity on our soil.
So briefly,
what is it that you expect will happen?
मुझे लगता है कि जो 12 तारीख की मीटिंग होगी उसमें पॉइंट टू पॉइंट इसी बात तो होगी कि पाकिस्तान कैसे अपने आतंकवाद को बंद करे. पाकिस्तान को ये हमें भरोसा दिलाना होगा कि आप वहां से आतंकियों को एक तो ट्रेनिंग नहीं दें, दूसरा उनको वित्त पोषण नहीं करें, उनको फंडिंग नहीं करें, और तीसरा
समय समाप्त हो गया.
अगर कोई आतंकवादी आपके यहाँ आपको पता चलता है तो आप उसे अरेस्ट करके हमें बताएं,
आप सभी हमारे हवाले करें. बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए, और अब प्रादेशिक समाचार के लिए हमारे साथ बने रहिए.
अभी आप सुन रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और मौजूदा स्थिति पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा और राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सोनू सूद और राजेश लेख. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में